राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10 मई 1993 साय लगभग 4 बजे गीता भंसर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।
वराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण 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 नारायण। पूछते हैं कि शरीर को भूख प्यास घाम शीत आदि सहकर कष्ट देने से क्या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? ना ये तपस्या हो सकती है जो कि शास्त्र की विधि के अनुसार करने से मनमाने ढंग से शरीर को कष्ट दिया जाए। उनको आश्रम से बताया है, गीता निषेध किया। अशास्त्र वेतन घोरम तप्यंते ये तपोजना दंभाहंकार संयोगता काम राग बलानता कर्षयंतर शरीरस्थम भूतग्रामम अतिरिक्त मान सेवांतर शरीर शरीरस्थम तान विद्धि आसुर असुर बताए। जो शरीर को मन बुद्धि को कष्ट देते हैं शास्त्र की आज्ञा के बिना अशास्त्र वेतन घोरम ऐसा घोर तप करते हैं तो उनको आसुर बताया, असुर बताया, राक्षस बताया। निबंधाया असुरी माता आसुर संपत्ति बांध रहे लिए है तो उसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति के भीतर लगन होती है। उस लगन को भी हरेक आदमी समझता नहीं है। वो लगन मन बुद्धि की नहीं होती है। पढ़े लिखे समझते मन बुद्धि की लगन, मन बुद्धि की नहीं होती है, खुद की होती है। खुद की होती है उसका असर पड़ता है। मन बुद्धि से बहुत थोड़ा लाभ होता है, असर पड़ता है। क्योंकि नहीं कल्याण कल्याणकारी काम करना दुर्गति नहीं होती। स्वयंप्य से धर्मस्थाते महत्व भया थोड़ा भी अनुष्ठान नेहा भी करूँ बहुत ऐसी बातें आई है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि को नहीं होती है, स्वयं को होती है। स्वयं होती है वो पक्की होती है। थोड़ी सी एक आप बुद्धि लगाए मेरी बात पर ध्यान दें। जैसे विवाह होता है तो वर कन्या दोनों ही भूलते नहीं, विवाह हुआ कि नहीं हुआ ऐसा नहीं होता है। तो ये जो स्वीकृति है ये स्वयं में होती है, ये मन बुद्धि में नहीं होती है। ऐसी जो व्याकुलता होती है भगवान के बिना असह्य व्याकुलता, रहा नहीं जाता भगवान के बिना। जैसे मीना मई रहे हो न जाए लग गया प्रेम बिहारी सो देखे भाई ना रहो न जाए न जाए। ये जो होता है ना ये खुद का होता है। वो खुद का जहां ऐसा व्याकुल भाव होता है वहां पर भगवान दर्शन होते हैं, प्राप्ति होती है। खुद के बेचैनी होती है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, प्यास नहीं लगती, बात नहीं सुहाती, कहीं मन लगता नहीं रात दिन में कहीं भी। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात ये पांच सुहाते नहीं। तो वो लगन होती है खुद की, स्वयं की। तब उस तत्व की प्राप्ति होती है। विधि विधान से बाहर की क्रियाओं से और तो होता है सब लोक परलोक की प्राप्ति सब होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति स्वयं को होती है, चिदाभास आदि को नहीं होती है। वो चिदाभास साक्षी ये एक प्रक्रिया बनाई है उस तत्व को समझने के लिए, परंतु ये प्रक्रिया काम नहीं करती है। असली तत्व के जानने में खुद की लगन काम करती है, प्रक्रिया सीखने में काम आती है, और सीखते हुए करते हैं तो करने में वो भी निष्फल नहीं जाती बात, उससे भी लाभ होता जरूर, परंतु वास्तव में है ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया अनेक तरह की है, अनेक तरह होने से ही प्रक्रिया एक सिद्ध नहीं होती है। और वो देखो भूख एक होती है और भोजन एक होता है, पर रुचि एक नहीं होती है। भोजन करने पर तृप्ति एक होगी, और भूख है जब तो भोजन नहीं मिला वो भूख एक है, पर जो भोजन की रुचि अलग अलग होगी। दो आदमियों की एक स्वामी रुचि नहीं होती है, बारीकी से देखा जाए तो सबकी अलग अलग रुचि होती है, तो ये रुचि अलग होती है। ऐसे स्वयं की भी रुचि अलग अलग होती है, किसी ज्ञान योग की, किसी कर्म योग की, किसी भक्ति योग की, किसी लय योग की, किसी हठ योग की, राज योग की, अष्टांग योग की, ऐसी होती है। इसमें सब में योग होता है, योग। अभी योग को समझने में जो रहता है थोड़ा, मैंने भी इस विषय को देखा तो कुछ परिश्रम पड़ा है भीतर से समझने के लिए। नित्य योग है परमात्मा का और इसका स्वयं का नित्य योग है, कभी यानी कभी योग होता नहीं। संयोग का भी योग होता है, योग का भी योग नहीं होता, योग नित्य होता है। जब योग नाम मिलन, तो मिलन है नहीं, अमिलन का जो हुआ है वहम वो मिटता है, परंतु उनका वास्तविक मिलन मिटता नहीं है, वो नित्य योग है। उसको जाने तो भी योग है, न जाने तो भी योग है, माने तो भी योग है, न माने तो उसका योग है, वो नित्य योग है, स्वतः सिद्ध है। जैसे अद्वैत सिद्धांत में एक ब्रह्म परमात्मा ही है और कुछ नहीं है, ये नित्य योग है, एक ब्रह्म है परमात्मा ही, कुछ नहीं, तो दूसरे का कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है, तो वह नित्य योग है। वो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का नित्य योग है। ज्ञानी का क्या होता है, उसको अनुभव हो जाता है, अज्ञानी को अनुभव नहीं होता, परंतु अनुभव हो न हो दो अवस्था नहीं होती है, तब तो वही होता है। अनुभव होने पर ये नहीं होता कि इतना दिन मेरे को अज्ञान था, मेरे को अनुभव नहीं था, ऐसा भाव नहीं होता है। अब अज्ञान मिट गया है, मेरे को ज्ञान हो गया है, ऐसा ज्ञान शादी नहीं होता है कि अमुक दिन के बोध हो गया, ऐसा नहीं होता है। पुस्तकों में ऐसा आता है, ज्ञान उत्पद्य थे पुरुषाम क्षय पाप से कर्म, पाप कर्म के क्षय होने से ज्ञान उत्पन्न थे, उत्पन्न होता है, ऐसा आता है, परंतु वास्तव में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान तो सत्य सिद्ध है, वो नित्य योग, नित्य योग सबका सत्य सिद्ध है। भ्रम मिट जाता है तो अनुभव हो जाता है। सर्वज्ञ मुनि ने संक्षेप शारीरिक में लिखा है, यद पाद पंकज शयनम विना में सन्नप्य सन्नव पर पुरुष पुरासीत। दुर्गुण महाराज के चरणों की रज्जु को हमने स्वीकार नहीं किया, आश्रय नहीं लिया, तब सन्नप्य सन्नव वो होता हुआ, सदा होता हुआ, सदा सर्वदा होता हुआ भी सन्नप्य सन्नव असन्न है ही नहीं, सन्नप्य सन्नव पुरुष परा पुरासीत, पहले पूरा ऐसा आसीत के होता भी नहीं है। पाद पंकज सेनादिदाने जब गुरु महाराज की कृपा के चरणों के रज को स्वीकार किया, तब नासी नचास्त नमश्चर भेद बुद्धि न भेद बुद्धि थी न भेद बुद्धि है और न भेद कभी हो सकती भेद होती ऐसा हुआ। इस वास्ते गीता ने ज्ञान हो गया नहीं लिखा है, नष्टो मोहा स्मृति रहा लिखा, स्मृति स्मृति अनुभूत विषय की होती है, जो नित्य ज्ञान है उसकी विस्मृति मिटती है, स्मृति हो जाती है, वो पैदा नहीं होता है। जीव ब्रह्म की एकता करनी नहीं होती है, की जाती है वो अन्यत होती है, बनाई जाती है वो बनावटी होती है, वो नहीं करती ऐसी। वैसे नित्य योग है, स्वतः है। इस वास्ते मैं कहता हूं कि ये प्राप्ति बहुत सुलभ है, कठिन नहीं है। प्रक्रियाओं के बीच पढ़ने से जल्दी पता नहीं लगता है ठीक तरह से, और ठीक तरह से अनुभव की इच्छा हो तो बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाती है। इस वास्ते केवल भूख प्यास सहने से तत्व की प्राप्ति ज्यादा होगा, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करने से आपके तपोबल होता है, तपस्या होती है। तपस्या का उपयोग पारमार्थिक बात में नहीं जा सकते हैं, तपस्या को किया जा सकता है, लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति में भी किया जा सकता है। तपस्या है, योग शक्ति है, जैसे पातंत्र योग दश में विभूति पाद का वर्णन है, तो विभूति पाद संयम से होता है, अनाध ध्यान समाधि का नाम है, आठ अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये आठ अंग पांच अंग तो पहले साधन पाद में आ गए, और अगर ध्यान धारण समाधि ये विभूति पाद में आता तीनों का, आठ अंगों का पाद तीन पांच अंग तो एक प्रकरण पर है, तीन आगे प्रकरण है, वो तीन धारणा ध्यान समाधि प्रेम एक पर संयम, इन तीनों का नाम संयम है। उस संयम करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है, सिद्धियां परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, विघ्न है, बिल्कुल न जाए तो प्रतिबंध होता है, तो होता है समय पार तो होता है, उससे होता है। परंतु वे सिद्धियां बताई है, वे है तेंतराया, कोई अंतराय है, मानो विघ्न है, बाधक है, वो व्युत्थान सिद्ध है, व्युत्थान में सिद्धियां उसी है, और तब तो मैं अंतराय विघ्न है, तो सिद्धियों का वशीभूत नहीं हो तो उसमें तत्व की प्राप्ति होती है। परंतु तत्व प्राप्त और क्या होता है इसका निर्णय पातंत्र योगदर्श ने ठीक दिया नहीं है, वृद्धांतन दिया है उसमें, तो वो समाधि परिणाम है, वो एकाग्रता परिणाम है, ऐसे परिणाम उसका होता है। तो क्या होता है तो इसको योगदर्शन को ठीक जानने वाले कहते हैं परिणाम होता है, बस वो समाधि परिणाम होता है, अंत का परिणाम होता ही रहता है, ऐसा होता है। निर्गुण समाधि होती है, धनवेग होता है, सफेद होती है, निर्बीज समाधि होती है, उससे तत्व प्राप्ति होती है, निर्बीज से बहुत समय लगता है प्राप्ति होती है। अपने विचार ऐसा कि जल्दी से जल्दी हरेक को प्राप्त कैसे हो, ऐसे मैं तो खोज में लगा हूं, पुस्तकों से, संतों से, महात्माओं से, प्रश्नोत्तर से, तो इसलिए हमें मालूम होता है बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है। जो मैं तय आप लोगों के सामने करता ही जो आता कुछ करता हूं, ऐसी बात है। तो भूख प्यास आदि सहने से तपोबल आ जाता है, आप में शक्ति आ जाएगी, अगर शक्ति वो उधर लगा हो तो उसे भी काम देगी, पारमार्थिक लाभ में भी अगर चाहो तो शक्ति काम देगी। तपोबल है ना, तपोबल तपस्या है, ये एक पैसे की तरह है, पैसा खर्च करके हर एक चीज खरीद सकते हैं, जो पैसे से आने वाली चीज है उन सब चीजों को खरीद सकते हो, बड़ी शुद्ध चीजों को खरीद सकते हो, अशुद्ध चीजों को खरीद सकते हो, ऐसे तपोबल से सब कुछ हो सकता है। जैसे ऋणाक्ष ऋणकशिपु ने तपोबल से संसार पर विजय कर लिया, और कभी नहीं मरू ऐसा बल ले लिया, तो ऐसी शक्तियां बहुत आ जाती, तपोबल से शक्तियां होती है, परंतु तत्व की प्राप्ति नहीं होती। रिनाक्ष के लिए कहा गया ऐसा तप पर किसी ने नहीं किया, तब एक पैसे किए एक पग पर एक अंगूठे पर खड़े रहना। तो ये भूख प्यास आदि सहना है शरीर का, ये तपस्या के अंतर्गत आता है, वो भी शास्त्र विधि के अनुसार कराने से। ऐसे भूखे मरण से नहीं होता, उसको आशु निश्चय होता है। दो श्लोक है 17वां अध्याय में। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का होता है, वो तपस्या करे, इस तरह से करे, चाहे शास्त्र अध्ययन करे, उनका उद्देश्य परमात्मा का होता है, तो वो उद्देश्य प्राप्त कर ही लेता है। उद्देश्य की तो सिद्धि हो, दृढ़ता और साधन की हो, तत्परता, दोनों विशेष मिलते हैं, तब उसकी सिद्धि हो जाती है, उसको भी प्राप्ति हो जाती है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? तत्व तो है, तो है उसी प्राप्ति में क्या बात, मृत्यु है वो, कभी अभाव हुआ नहीं, कमी आई नहीं उसमें। तपस्या आदि से सहायता होती है, श्रवण मनन से सहायता होती है, प्रसाद से, सत्संग से सहायता होती है, पुस्तकों के अध्ययन से सहायता होती है। परंतु पूज्यों का अध्ययन का अभिमान न हो, तब अभिमान होता तो फिर सहायता नहीं होती, उसे बाध हो जाती है, विद्या बाध हो जाती है, परमात्मा तो प्राप्ति में विघ्न होता, बड़ा भारी अभिमान है। संस्कृति मूल शूल पर बनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, संपूर्ण शोक, कोई भी शोक बाकी न बचे, ऐसे शोक देने वाला अभिमान है। वो धन से, विद्या से, योग्यता से, पद से, अधिकार से अभिमान होता है, वर्ण का, आश्रम का अभिमान होता है। वो अभिमान परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के कारण नहीं देता, वो बड़ा बाधक होता है। इस सब दृष्टि प्राय आदमियों की नहीं है, ये कहाँ बाधा हो रही है, कैसे तत्व की प्राप्ति होगी, इस सब खोज करते नहीं है। जैसे पढ़ाई करने वाले आज पढ़ करके बड़े अच्छे विद्वान नहीं बनते, कान के पास होने की धुन होती है, पढ़ना ही सुनने की धुन होती नहीं, ऐसे विद्या पढ़ करके अपने योग्यता की वृद्धि करते हैं। योग्यता से परमात्मा नहीं मिलते, योग्यता से संसार में अधिकार मिलता है, योग्यता अयोग्यता वह काम नहीं करती, वह स्वयं की लगन काम करती है। बिल्कुल अपर आदमी को तत्व ज्ञान हो सकता है, पढ़े लिखे को हो सकता है, पर पढ़े लिखे के लिए मुश्किल होती है। बड़े होते हैं आश्रम में बड़े होते हैं, उनके बड़ेपन मिटाने में बड़ी मेहनत पड़ती है, ये मिटना बड़ा कठिन हो जाता है, प्राप्ति कठिन होती है। तो शरीर का कष्ट सहने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जानी है। अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए करता है तो अलबत्ता कुछ होता है, वो तो पूर्ण नहीं होता, लाभ होता है, अंतर के दोषों को शांति होती है। इसमें कोई बात पूछो, बस
श्रीनाथ जी पूछते हैं, मन में संकल्प विकल्प चलता रहता है, उसके कैसे छुटकारा कैसे होगा?
देखो, संकल्प विकल्प को मिटाना है ना, ये कठिन है। 20-50 वर्षों तक सत्संग करते हैं, उनके भी संकल्प जल्दी नहीं मिटते। मिटाने की चेष्टा करना है, वो संकल्प विकल्पों को दृढ़ करना है, मजबूत करना है। हम किसी को मिटाने का प्रयत्न करते हैं तो जिसको मिटाते हैं उसको मजबूत समझते हैं तभी तो मिटाते हैं। तो मजबूत समझते हैं ये अनजान पने से दृढ़ होता है। मनुष्य समझता है कि मैं मिटा रहा हूं और कर रहा है दृढ़, मजबूत कर रहा है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती इस आदमी को। तो अभ्यास वैराग्य से मन लगता है, मिटता नहीं है। मन के संकल्प मिट बोलते हैं तो मन पकड़ा जाता है अभ्यास और वैराग्य से, तो ये मन का निग्रह होता है, ये मूल क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निर्देश 5 भूमिका है मन की। तो एकाग्रता और निरोध भूमिका में प्रवेश होता है। क्षिप्त और विक्षिप्त को नहीं, क्षिप्त मूड और क्षिप्त को नहीं, विक्षिप्त को अधिकारी होता है और वहां से एकाग्र और निरोध भूमिका में जाता है। तो मन की एकाग्रता है, इस पर भगवान ने ज्यादा जोर नहीं दिया है। अर्जुन के प्रश्न के अभी दो श्लोक है 33 और 34 और भगवान के उत्तर के अभी 35-36 दो श्लोक है। इतने थोड़े भगवान किसी प्रश्न के उत्तर में नहीं बोले हैं। गीता में कई प्रश्न किए हैं, किसी प्रश्न के उत्तर में इतने थोड़े नहीं बोले, इतने थोड़े बोले। चंचल भी बना कृष्ण प्रमादी बने कैसे असंशय असंशय महाभाव चरण। आधा श्लोक तो अर्जुन की प्रशंसा में कर दिया, फिर अभ्यास कौन थे वैराग्य के तो आधे श्लोक में उपाय बता दिया, और आधे श्लोक में एक श्लोक में बताया कि जिसका मन वश में है उसको योग प्राप्त हो सके पर मेहनत करे तो, और नहीं तो उसको भी प्राप्ति नहीं होती। असंग यथात्मना योगो दुष्प्राप इतने मती वश्यात्मना तो ये सत्ता सत्यो माप तुम उपाय तक। तो उसमें आधे श्लोक में उपाय बताया, डेढ़ श्लोक तो पहली आधा प्रशंसा में गया, आधा अगड़ी में माना गया, उसके अधिकारी अंधिकारी में गया, दो ही श्लोक गए। इनको भगवान महत्व नहीं देते हैं, साध्या महत्व भक्ति को देते हैं, त्याग कर्मियों को देते हैं, ज्ञानियों को देते हैं, इनको महत्व देते हैं। साधन में लगेगा उसको लाभ तो होगा ही, भूलें होती है तो वो थोड़ी मिटती रहती है और लाभ तो होगा नहीं। कल्याण कृत कष्ट दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान ने बड़े प्यार से कहा, तात प्यारे कल्याणकारी काम करने वाला है उसकी दुर्गति नहीं होती। पार्थ नहीं वे नामोत्र बिना उसका विनाश नहीं होता, वो योग होता है, योग भ्रष्ट होता है, फिर योग भ्रष्ट की गतियां होती है, ऐसा वर्णन किया सच्चा अध्याय ग्रंथ में। बहुत विलक्षण ग्रंथ है भगवद गीता ग्रंथ, बहुत अलग है, बड़ा विलक्षण है। जो हम देखते हैं समझते हैं नए नए चीज पैदा हो रही, नए नए भाव पैदा हो रहे, अनेक तरीके विलक्षण विलक्षण शांति देने वाले आनंद देने वाले ऐसे उसे भाव पैदा होते हैं। भगवत वाणी है विचित्र है, ऋषि मुनियों की वाणियों से भी विलक्षण है, भगवान की वाणी है बहुत विचित्र, बहुत संतोष होता है, शांति मिलती है। अरे जो बड़ी सुगमता से प्रतिपादन किया जा सकता है, प्राप्त चाहे तो बहुत जल्दी हो सकती है, सुगमता से हो सकती है। देखो साधन दो तरह का होता है, एक साधन भीतर से उठता है और एक साधन भरा जाता है। तो प्रायः भरने साधन को ही मानते हैं, भरा ऐसा योग करो, ऐसा ये करो, ये करो, उससे ये होगा, ये होगा, तो ऊपर से भरा जाता है साधन। वो भरा हुआ साधन इतना काम नहीं करता है, भीतर से जैसे भूख लगती है तो भूख लगती है तब अन्न अन्न रुचता है, जसता है, पचता है। बिना भूख के आप बढ़िया से बढ़िया भोजन करो, उसे ना रुचता है ना वो पचता है, उसे शक्ति नहीं आती है। ऐसे भीतर से भूख लगती है जब, तब ये चीज होता है। पढ़ाई आदि करना सीखना ये ऊपर से भरना है, ऊपर से भरने संग्रह तो बहुत हो जाता है, पर संग्रह होने पर भी तत्व की प्राप्ति में कठिनता पड़ती है, समय पाकर तत्व की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उस प्राप्ति की लालसा है भीतर में, तत्व तो जानना चाहता है, वो लालसा बढ़ने पर उसको प्राप्ति होती है। इन साधनों के द्वारा हो जाए ऐसा नहीं है, साधनों के बल से कर रहे ऐसा नहीं है। साधन कितना ही किया जाए, अभ्यास कितना ही किया जाए, उसमें जड़ का सहारा लेना ही पड़ेगा, नाशवान का, शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, प्राणों का, इनका सहारा लेना ही पड़ेगा। जहां जड़ का सहारा लेगा उस जड़ का त्याग कैसे होगा, जड़ के त्याग बिना चेतनता की प्राप्ति कैसे होगी। कोई भी अभ्यास करेगा, किसी तरह का भी प्रयत्न करेगा, तो उस जड़ के सहारे बिना कर नहीं सकता। मन बुद्धि इंद्रियां प्राण आदि की सहायता के बिना कोई अभ्यास कर नहीं सकता, अभ्यास हो नहीं सकता। इस वास्तव अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है, तत्व नहीं मिलता है। जैसे रस्से पर चलने का अभ्यास करे तो रस्से चलने की अवस्था आ जाती है, वो एक विद्या आ जाती है, रस्से पर चल सकते हैं, एक रस्से पर इतना। तो ये अभ्यास से एक अवस्था बनती है, तत्व अवस्था अतीत है। तुरीय अवस्था कहकर के तुरीय अतीत होता है, अति बनना शुरू होता है शास्त्रों, तुरीय अतीत है वो। ये प्रेरणा काम देती है, कैसे तत्व की प्राप्ति हो, कैसे ये भूख बढ़ जाए तो आपके साधनों की जरूरत नहीं, प्राप्ति हो जाती है। ये असली असली व्याकुलता जागृत हो जाए तो व्याकुलता की अग्नि में अशुद्धि जल जाती है, बहुत जल्दी अंतर्ग्रहण निर्मल हो जाता है और परमात्मा को तीर्थ सन्मुख हो जाता है। उतना साधन से नहीं होता, व्याकुलता से होता है। व्याकुलता स्वयं में होती है, मन बुद्धि नहीं होती, स्वयं में होती है। स्वयं जो अहम है ना, अहम, मैंने बहुत बार कहा कि मैं हूं, इसमें जो मैं भाग है ये प्रकृति का है, हूं भाग है परमात्मा का है, इसको जड़ चैतन्य ग्रंथि कहते हैं। और मैं और मेरा ये इसको सन्निपात का है, ये सन्निपात रोग है। वाजपित कप तीन रोग होते हैं, इस तरह से तीन गुण है, सत्व स्तंभ, ये तीन गुण अलग अलग होते हैं। प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजी सन्निपात रुगदाई, तीनों दोष कुपित होते हैं। वाजपित विश्राम सन्निपात ही, वैद्यों की परीक्षा सन्निपात में होती है, वह बड़ी कठिनता से काम होता है। ऐसे ही सत्वस्तम तीनों कुपित होते हैं तो वो सन्निपात होता है, वो सन्निपात से मैं और मेरा होता है, इस वक्त मैं और मेरा छूटने में कठिनता होती है। निर्ममो निरहंकार सशांति में, निर्मम और निरहंकार, अहंकार मैं हूं, इसमें अहंकार बिल्कुल मिट जाता है। परंतु अहंकार को रख करके एकता करते हैं, वो इतना वर्ण आ गया है कि अहम अहम है, वो अहम ये ही परमात्मा से एकता करता है, नहीं तो द्वैत रह जाएगा, अद्वैत नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि से एकता होगी और अहम रहेगा, ये समाज समझ में नहीं आया। मेरी दृष्टि से मैं देखा है, पढ़ाई की है, देखा भी है, अहम रहित मनुष्य होता है और अहम रख करके करते हैं। शास्त्रीय प्रक्रिया है ये, कोई निरर्थक नहीं है, पर बहुत लंबा रास्ता है। आप लोगों के सामने मैंने बहुत सुबह सुबह बातें की, आज सुबह ही कहा ना कि वो वास्तव में जो स्थिति है वो निरंतर नहीं रहती, असत से संबंध विच्छेद होना कठिन हो गया, असत में स्थिति अपनी होती है, वो स्थिति टूटने मुश्किल हो जाती है। सत मानते सत में स्थिति नहीं होती है, तो उस कारण मुख्य क्या है कि उद्योग परिश्रम जितना किया जाता है वो असत की सहायता से किया जाता है। असत की सहायता से काम करने वाला असत का त्याग कैसे करेगा, असत त्याग कैसे होगा, असत जो सहायता मानता है उसका बल है, उस बल से उसे प्राप्त करना चाहता है।
जानकारी
से लाभ होता है, जिज्ञासु और जानने वाला तत्व की हो, तो उनके प्रश्नोत्तर से बहुत लाभ होता है, उसे पढ़ाई से नहीं होता उतना, वर्षों को तो करो नहीं होता, और तत्व की जिज्ञासा हो और जानना चाहता हूँ और पैसे तत्व के पुरुष मिल जाए, वैसे ही अगर दिल खोल कर बातें वो साफ खोल करके और अपना कोई पक्षपात न रख करके किसी संप्रदाय का किसी द्वैत अद्वैत विश्वास किसी का कुछ भी पक्षपात न रखे, आग्रह न रख करके और खुला हो तो प्राप्त में जल्दी होती है। नहीं, प्रक्रिया का सहारा लो, सहारा लेने में दोष नहीं है, परंतु प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त हो जाएगी ये बात नहीं है, सहायता मिलती है।
जैसे लोकर और सारो लेकर के पानी से पार हो सकता है, लोकर और सारो लेकर के पानी पार हो जावे,
तो नौका है ना, नौका जल में ही चलती है, जल से आगे बंद हो जाती, नौका चलती नहीं,
तो
पहुंचाती, बहुत फायदा होता है, पहुंचाती है ये तो फायदा होता है, परंतु उसका अभिमान न हो, अभिमान हो तो बड़ा कड़ा अभिमान होता है वो। ये जो कई तरह के मिट्टी आदि के, मिट्टी आदि का दोष होता है बाधक, उससे भी ज्यादा जल का दोष बाधक होता है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म छेद होते हैं अंजन आदि में, उससे भाप निकलती है, वो भाप निकलने वाले छेद और पानी से भाप से अटक जाते हैं, तो लोहे के टंकी लोहे से वो टंकी से नहीं टूटता, जल का इतना मजबूत भाप का बनता है तो वो टंकी से नहीं टूटता, ऐसा होगा मजबूत। इस तरह से इसका अभ्यास करते करते वो ऐसा हो जाता है जो उसका टूटना मुश्किल हो जाता है, उसका सहारा दिया है, उसको महत्व दिया है, आदर दिया है, इस वास्ते उसमें बहुत देर लगती है, इस वास्ते जानने वाला आदमी चाहिए। मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने पर भी मन में ऐसी एक लगी कि कोई जानकार आदमी हो, पढ़ाई में ही पढ़ाई तो जानने का मिलेंगे कोई, पढ़ाई के विद्वान तो कई मिल जाएंगे, तत्व को जानने वाले बहुत कम मिलेंगे।
अरे ये बात तो समझ में आती है, तत्व की प्राप्ति जो है वो तो किसी कार्य चीज का कार्य नहीं है, तत्व प्राप्ति के लिए यत्न करना है, शुरू में तो होगा ही,
करना ही पड़ेगा, शुरू में नहीं छेड़ तो होगा, एक होता है, एक होती क्रिया, एक होता है प्रयत्न, उसमें क्रिया वहां तक नहीं चलती, प्रयत्न चलता काफी दूर तक, फिर वो प्रयत्न भी समाप्त हो जाता है, क्रिया किया जाए ये क्रियाओं ऊपर की है, और प्रयत्न भीतर की लगन से होता है, वो लगन भीतर का वो प्रयत्न है, इस बात से प्रयत्नाद हेतुमानस्तु योगी संशुद्ध के विषा अनेक जन्म संशय दस तत्व हो जाती परांगतिम, प्रयत्नाद हेतुमान सूर्याचार्य लिखा है, प्रयत्न से मानो आज किया जैसी लगन से उससे दूसरे दिन और हो, प्रयत्नाद हेतुमान, प्रयत्न यत्न किया, यत्न से यत्न किया जाए, प्रयत्नाथ ये तो मानस योगी संशोधन के विषय उनका पाप नष्ट होता है तो फिर सिद्धि हो जाती है, अनेक जन्म संसिद्ध है, वो अनेक जन्म संसिद्ध का ये अर्थ नहीं है कि अनेक जन्म लगेंगे, ये नहीं है, अनेक जन्म संसिद्ध ये संसिद्ध का प्रत्यय है, ये भूतार्थ होते हैं, अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ, मानो पहले योगाभ्यास करता था, योग भ्रष्ट हुआ, फिर वो उसी मानव के लिए अच्छा योग वहाँ प्रयत्न करता है, तो उस जन्म से इस जन्म से अनेक जन्म से सिद्ध हुआ है, अनेक जन्म से सिद्ध का ये अर्थ नहीं है कि अनेक जन्म लगेंगे तब होगा, ऐसा नहीं है, फिर से एक जन्म ही नहीं, उसका दो जन्म है, तो एक के सिवा दो जन्म अनेक जन्म हो गए, हजारों जन्म एक जन्म, अनेक जन्म है दो जन्म भी अनेक, न एक अनेक, एक नहीं, परंतु उसकी प्राप्ति कोई चाहे तो एक जन्म में भी थोड़े भाग में प्राप्ति हो सकती है, अपनी उम्र का जितना हिस्सा है उसमें थोड़े हिस्से में भी उसकी प्राप्ति हो सकती है, भगवान ने इतना अवसर दिया है कि एक मनुष्य अपनी उम्र में कई बार प्राप्ति कर सकता है, तो कई बार प्राप्ति करनी नहीं पड़ती, एक बार ही प्राप्ति करनी पड़ती है, परंतु समय इतना दिया है कई बार प्राप्ति कर ले सर। मौका ऐसा दिया है भगवान ने, उपलब्ध कर सकता है। पढ़ाई की जाती है ना एक एक संप्रदाय की, अद्वैत की, द्वैत की, विशिष्टा द्वैत की, शुद्धा द्वैत की, द्वैता द्वैत की संप्रदाय, इनके अनुसार करने से वो संप्रदाय का एक आग्रह बन जाता है, वो आग्रह तत्व की प्राप्ति होने में मिलता है। हाँ अच्छा सब्जी समय लगेगा, अच्छा सब्जी हाँ हाँ काम आए, काम तो आएगा ही। कल्याण कृष्ण प्राप्त, कल्याणकारी है जिसका विचार अपना परमात्मा तो प्राप्त करने का है, वो उसके लिए उद्योग करता है, वो उद्योग निश्चित मिल जाएगा, वो सफल होगा। परंतु कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, ये अलग बात है। जितने लगे हुए हैं उनमें लाभ होता है। जैसे अब सत्संग में आते हैं, ये अभ्यास भी नहीं करते, सुनते हैं तो सत्संग सत्संग के द्वारा कई बातों का बोध हो जाता है, अच्छे अच्छे पंडितों को नहीं होता। वो शास्त्री पंडित है, वेद के पंडित है, वो भी साधन की बात में इतना उत्तर नहीं दे सकते जितना ये साधन अपर आदमी बता सकते हैं। अभ्यास काम आया, सुनना, मनन करना, आपे आप सुनना। मैंने कहा था ना, मैं तो वहां भवन में कहा था कि आप लोग पत्थर हो, मैं पत्थर हो गंगा जी के, तो गंगा जी के प्रमा में गुड़ते गुड़ते बड़े गोल गोल पत्थर हो जाते, बड़े सुंदर स्वामी पहन जाता, परिश्रम कुछ करना ही नहीं पड़ता। ऐसे सत्संग में प्रवाह में पड़ा पड़ा बहुत जानकार हो जाता है, वो जानते जानते बहुत जान लेता है। इसमें शास्त्रीय पंडित से वो पंडिता ही हो जाती है, शास्त्रों के विषय में ज्ञान हो जाता है, परंतु साधक को कैसे चिंता किस विषय इस विषय का ज्ञान असली सत्संग मिलने से होता है, सत्य होता है। क्योंकि असली तत्व है, अब है उसको प्राप्त करने में क्या है, ये गंगा जी है, वो कह दिया गंगा जी है, जाने गंगा जी, इतने ही काम है, इसमें क्या परिश्रम पड़े। छा पड़ जाए, यही बात है, अच्छे से पढ़ने पता लग जाता है। हमारी गाय कृपा, कृपा तो भगवान की है, गीता की है, पता लगता है। इस बात से असली सत्संग ठीक मिल जाता है और वो उसमें घुल मिल जाता है तो वो छोड़ नहीं सकता, उसके हाथ की बात नहीं है। उसमें रस आता, से बच्चा माँ का दूध पीता है, उसको कर दो दूर तो बेचारा निर्बल है, छटपटाने लगता है, वो ऐसा रस आ रहा हमेशा हमेशा, अब कैसे छोड़े वो। इसलिए सत्संग से एक लाभ होता है, वो छूटता नहीं। हमें तो आश्चर्य आता है कि असली सत्संग की बातें भी आदमी छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, मेरे को बहुत आश्चर्य आता है। मैं तो अपना अनुभव विचार करता हूँ कि मेरे को ऐसी मार्मिक बातें मिल दो, मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे हाथ ही नहीं है बात छोड़ने। यार लोग ऐसी ऐसी मार्मिक बातें छोड़ करके फिर चले जाते हैं, पर वही नहीं करते, तो आश्चर्य आता है। जो जिज्ञासु है, जिनको और कुछ करना नहीं है, धन इकट्ठा करना नहीं है, मकान बनाना नहीं है, चेला चेली संप्रदाय बनाना नहीं है, ये कुछ उद्देश्य नहीं है, फिर भी असली शत्रु को छोड़ जाते हैं, ऐसा आते हैं तत्व को, तो बहुत आश्चर्य आता है।
भूख तो कोई सीधा नहीं लगे, लगे कोई भूख, भूख लगे कोई वापसी।
हाँ भाई बात क्या, भूख लगे तो बहुत बड़ा है। स्वयं ज्योति महाराज ने पूछा कि महाराज भजन कैसे, भजन तो भूख से होता है, भूख से काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा बन गए, काम तो इतना है, भजन भूख से। असली चटपटी मन में लागी, चटपटी कम निरखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। जिसके ये लगन होती है उसको जो मार्मिक बातें मिलती है तो छोड़ नहीं सकता, उसको पता लग जाता है सत्संग में व्याख्यान में ये वक्ता है, जो वो लगन वो ऐसा लगता है उसको, आप सब तिपक जाता है। जहाँ असली बात मिलती है, हमारा परिचय हो चाहे न हो, वहां कुछ एक चिपक जाता है। जैसे भूखा है तो अन्न मिलते ही, प्यासा है तो जल मिलते ही लग जाता। इस तरह से अस्थि जिसकी नगर होती है वो संप्रदाय में नहीं अटकता, उसको प्रत्यक्ष मांग होता है। वो संप्रदाय की बातें कहते हैं उसमें उनको रस नहीं आता। अद्वैत द्वैत आदि का झगड़ा होता नहीं, उसके होते ही ये सांख्य ही प्राप्त है स्थानम पर योग ही अपने अपने एक सांख्य योग जैसे मोह कलिल है ऐसे श्रुति प्रवृत्ति भक्ति भी एक एक बंधन है। जैसे संसार का मोह परमात्मा की तरफ नहीं चल रहने पड़ा ऐसा ही मोह शास्त्रों का है, वो द्वैत अद्वैत का चल रहा ऐसा ही है, जल्दी पार नहीं पाता है मनुष्य, समझ नहीं पाता है। अब किसको बढ़िया कहे किसको घटिया कहे समझ नहीं आती, ऐसी बात होती है। परंतु अच्छा असली जिज्ञासु होता है ना, वो किस तरह के भरता गुरता किस तरह से उसको प्राप्त कर लेता है, उसकी लगन होती है। हरेक व्याख्यान में हरेक विवेचन में शास्त्रों विवेचन में वो अटकता नहीं, वो देखता नहीं हमको कुछ मिलता नहीं था, जो चलाती है उसको टिकता नहीं ठहरता नहीं, ये उसके हाथ की बात नहीं है। असली जिज्ञासु होता है वो अटक नहीं सकता, अर्जुन लाभ होता ही है। कैसे ही सत्संग मिला है कैसे ही शास्त्रों का विवेचन मिला है कुछ मिला है उससे भी कुछ न कुछ लाभ होता ही है, क्यों असली बात का जिज्ञासु है वो, इस बात से उनमें अटकता नहीं, मिल लेता ले लेता है सबसे परंतु अटकता नहीं। जहां असली बात मिलेगी तो वहां अटकता ही नहीं भटकता ही नहीं, फिर तो चिपक ही जाता है उसको छोड़ नहीं सकता। फिर ऐसे संप्रदाय में भी दीक्षित हो जाए तो वे छोड़ नहीं सकता, पर वो छोड़ नहीं सकता, वो हर इतना काम नहीं देता है। बहुत गहरी गुत्थी है ये संप्रदाय की, जल्दी जल्दी उसके पार पाना बड़ा कठिन होता है। तो जिससे लाभ होता है जैसे मैंने कहा अभ्यास आदि करेगा तो असल वस्तु का जड़ चीज का सहारा लेना पड़ेगा, तो सहारा जिसका लेगा उसका त्याग कैसे करेगा। ऐसे जिस संप्रदाय से कुछ लाभ हुआ है तो उस संप्रदाय का त्याग कैसे करेगा। संप्रदाय त्याग में कहता भी नहीं कभी कि संप्रदाय का त्याग करो, पर संप्रदाय के अभिमान का त्याग करो तो कहता हूँ। विद्या अध्ययन विद्या त्याग करो नहीं कहता हूँ, विद्या का अध्ययन का अभिमान इसका त्याग करना पड़ेगा। वर्ण का आश्रम का एक अभिमान बनता है। गृहस्थी को जितना जल्दी लाभ होता है उतना भेग लिए उतना जल्दी लाभ नहीं होता। क्षमा करना मैं तो भेग लिया ही हूँ। मानो गृहस्थ है उसको जितना जल्दी लाभ होता है उतना साधु को जल्दी लाभ नहीं होता। कारण वो आग्रह हो जाता है, मिट जाता है मन में, एक आ जाता है मैं साधु हूँ, कोई नमस्कार न करे तो असर पड़ता है, करते असर पड़ता है तो मान बड़े में ज्यादा फंस जाता है। इस वास्ते कठिनता पड़ती
है।
अच्छा बोलिए यही बात, यही बात एकदम, ये बात एकदम आग्रह अभिमान ये द्वारा संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमान।
मेरा ये पूछना है कि ब्रह्म विद्या अध्ययन करे सत्संग करे सुने तो अभिमान क्या थे मेरे ये कहना।
मैं छेड़ेगा तो नहीं, सत्य जिज्ञासु नहीं छेड़ता, परंतु साथ में जिज्ञासा होती है ना उसके साथ बुभुक्षा भी होती है। मानो तत्व की जिज्ञासा होती है, भोग की इच्छा होती है, संग्रह की इच्छा होती है, वो जल्दी मिटती नहीं, इस वास्ते वो पक्ष साथ पनपता रहता है। भोगे सूर्य प्रसन्नता नाम, संग्रह करना और सुख भोगना ये दो आसक्ति ऐसी जबरदस्त है जो परमात्मा को चलने में बड़ी बाधा देती है। वैसे वो संप्रदाय का अभिमान, शास्त्र का अभिमान, ग्रंथों का अभिमान ऐसा होता है, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान, साधु हूं मैं इसका अभिमान, ये सात पंक्ता रहता है। साधन करते हुए भी ये चीज रहती है। शरणानंद ने कहा था, मेरे को बहुत अच्छी लगी बात, कहते हैं कि साधु सह नहीं सकता, प्रतिकूलता सह लो तुम इधर चल जाएगा, चलेगा नहीं सही बन गया है, फिर गृहस्थ कहां चला जाएगा, उसको माँ बाप को छोड़ेगा, स्त्री पुत्र को छोड़ेगा, भाई भतीजों को छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा नहीं, तो उसकी सहिष्णुता होती है और साधु की असहिष्णुता होती है। थोड़ा विक्षेप हुआ, थोड़ी अनुकूल नहीं मिले, चलो नहीं, तो बहुत कसास रह जाती है उसमें।
जैसे आप बताइए बलवान भोग लगे ना, बलवान धाकियों को तृप्ति नहीं है, हृदय में लाए लगी है तो करा
दे, वगैरह नहीं, बिल्कुल सही बात, तो मैं उसकी चटपटी लगी है, आग लग गई है, वो सब सहन करा देगी, प्रतिकूल अनुकूल परवाह ही नहीं, वो नहीं छोड़ सकता, असली सत्संग को वो नहीं छोड़ सकता जिसके भीतर में असली लगन लगी है। आप कृपा करेंगे मेरे पर, दया करेंगे, मैंने ऐसे करके देखा है, बहुत सुगम बातें, सरल बातें कह करके ऐसा देखा है, तो वे सुन लेते हैं, राजी हो जाते हैं, परंतु जल्दी छूटते नहीं, वो भीतर में कुछ रहता है, उनको खुद को पता नहीं क्या बाधा है, परंतु उनके लगन नहीं लगती। मैंने देखा है, मेहनत की है, व्यक्तियों को लिया है कि ये व्यक्ति ज्यादा जानते चाहते हैं, उनको इकट्ठा करके विचार किया जाए, कैसे कुछ उद्योग किया थोड़ा सा मैंने, परंतु वो भी कोई कोई से तो ठीक बैठ दे रहा है और ज्यादा बैठ कर नहीं ठीक। मेरे तो बरसों से ऐसी लगन है कि भाई लोग है, बहना है, ये एक उस तत्व को जानने के लिए उत्कर्षित हो जाए, खूब लालसा हो जाए, और फिर भी दो चार पांच मिल करके और विचार करें तो बड़ा लाभ होता है। असली असली लगन लाल होनी चाहिए, अपनी जान होनी चाहिए, उसके बिना बेचैन होने चाहिए।
क्या बाधा है?
बाधा संयोग जन्य सुख कई आ सकती, लिख लो नहीं, संयोग जन्य सुख की, मान की, बढ़ाई की, आराम की, ये होती वितरण दागसा, संग्रह करने की सुविधा, सुख सुविधा की। हमारी पोल आपको बताते नहीं है, आप हंसोगे, हम देखते हैं कि स्नान करने के लिए अच्छा पत्थर है कि नहीं वहां, और कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी है कि नहीं, वो नहीं मिलती तो मन नहीं लगता, ये हमारे लिए।
आपका पोल बताने से मन समझ में आवे, मैं एक दिन सुना, मुझे खुश हो, आपने कहा संत मेरा विश्वास ही, और मेरो विश्वास परमात्मा में क्यों को नहीं हुआ, जरा बोझा का पापा तेरी भूल है, कहीं काई बर्तन मेरो को तो मन मेरो को ना नहीं, तेरो अपना अपना है, जन कहीं और क्रिया से संबंध जोड़ दो, सब है क्रिया से संबंध जुड़े नहीं।
आप पूछना क्या चाहते हैं? पूछ लो भाई जाओ,
और इतनी बात मुझे आशीर्वाद में कही है ना, हमारी
आपकी बात का समर्थन कर
रहे हैं, समर्थन कोई बात नहीं, कोई पूछ रहा है तो पूछो, हृदय की लगन है ना, उसमें वो संयोग जन सुख की आसक्ति है, उसके अनुसार संयोग जन सुख मिलता है, उसमें वो रस लेता है, उसमें आनंद लेता है, तो वो अटक जाता है, आगे पहुंचता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा, संस्पर्श जा संबंध जन्य जितने भोग हैं, दुख योने एव तेवे, सब के सब दुख के कारण है ही, उससे दुख उत्पन्न होगा ही, नियम है। ये ही संस्पर्श जा भोगा, दुख योने एवते और आद्यंत मंत्र कौन थे निर्देशु रमते बुधा बुधा संयोग जनसु का रमन नहीं करता। कितने संयोग दुखों के कारण है और उत्पत्ति विनाशील है नित्य है नहीं तो विवेक उसमें नहीं बनता है। विवेक काम नहीं करता है। जब सामने पदार्थ आते हैं भोग आते हैं आदर आता है प्रसाद आते हैं तो विवेक ज्यादा लुप्त हो जाता है। जैसे मालिन साग लेकर के बैठी है और वो साग की बिक्री कर रही है, गाय दूर से देखते हैं तो फल और हरी हरी घास उसमें टोकरे में दिखती है तो गाय खाने के लिए दूर से आती है तो वे मालिन डंडा के पास में लाठी रखती है तो आ करके वो नजीक आ गए तो मुंह मारती है तो मुंह मारती है तो डंडा लेने वो आंख में से लेती है। अब आंख को ढाल थोड़ी है पर आंख मिच जाती है। इस तरह से भोग सामने अनुकूलता महाराज महाराज आंख मिच जाती है डंडा पड़ेगा फिर तो आंख मिच जाती है। विवेक उस समय जागृत नहीं जाता वो भय रहता नहीं आंख मिच जाए लाठी का भय वो तो खा नहीं सकेगी तो आंख मिच लो अपने अपने देखने के लिए अब नहीं देखेंगे लाठी बढ़ती आएगी क्या। इस तरह से रुपये पैसे सामने आते हैं भेंट पूजा आती है आदर आता है महिमा आती है सत्कार आता है तो वो आंख मिच लेता है ले तो ले उसमें आंख खुली नहीं होती। विवेक होता है वो डरता है इसे मिच्छू सी बगैर पड़ा मिच्छू सी बढ़ाई जाके नागनी सी नारी है बढ़ाई लगती है बिच्छू का अंश काटा लगे जू ये जितने है मन के इंद्रियों के शरीर के प्रतिकूल है उनसे घबराहट होती है अनुकूल की आसक्ति होती है ऐसी बात है। अच्छा आयुषण पूछो आप कोई पूछो मेरे को आयुष कह दू मेरे कई पुस्तक देखी हुई है संतों की बात मैंने सुनी है।
बाह्य स्पर्श से
अशक्त आत्मा क्या है कौन सा सुख है बाह्य स्वरूप में आसक्त होगा है वो त्याग से मिलता है बाह्य स्वरूप में आसक्ति वालों को नहीं मिलता उसको बता नहीं सकते हम सांसारिक सुख का भी वर्णन नहीं कर सकते तो वो बाह्य स्वरूप से अशक्त आसक्ति रहित होता है उसको सुख कैसे मिलता है यद सुखों को कैसे वर्णन किया।
विंदती
लाभ होता है विद्यागिरी लाभ है विद्यागिरी लाभ है धातु से विंदती बनता है तो लाभ होता है उसको परंतु किसको होता है बाह्य स्पर्श से अशक्त आत्मा बाह्य स्पर्श पदार्थों में जो आसक्त नहीं है वो अपने में सुख का अनुभव करता है। सुख का अनुभव करने पर और परमात्म तत्व की और अपने की एकता का अनुभव करता है तब अक्षय सुख मिलता है। इस एक श्लोक में बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा विन्दति आत्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय मस्तुति आत्मा को सुख मिलता है ब्रह्म के साथ एकता को सुख मिलता है फिर अक्षय सुख मिलता है। सुखम आत्यंतिकम यह तद्बुद्धिग्राह्य मत इंद्रियम आत्यंतिक सुख मिलता है उससे बढ़कर सुख कोई हो नहीं सकता यंग लब्धवासा पर लाभ हो हमारी बुद्धि ग्राह्य बुद्धि जागृत रहती है। इसमें तीन पद आए हैं बुद्धि ग्राह्यम और अतिम और आत्यंतिकम सुखम आत्यंतिकम यह तद बुद्धि ग्राह्यम अतिम्रियम तो बुद्धि ग्राह्यम का कहना जागृत होती है सुषुप्ति नहीं होती है अतिंद्रिय कहने से इंद्रिय सुख नहीं है और आत्यंतिक कहने से सात्विक सुख नहीं है सत्व रज तम तीनों से अतीत कहना तात्पर्य है बुद्धि के द्वारा वो नहीं होता है बुद्धि ग्राह्य है मन बुद्धि जागृत रहती है बुद्धि है उसमें विवेक शक्ति जागृत रहती है बुद्धि ग्राह्य है बुद्धि का विषय नहीं है मदद मिलती है
काम करती बुद्धि, पर बुद्धि ग्राह्य नहीं है वो। बुद्धि ग्राह्य का मतलब है सुषुप्त नहीं है, आत्यंतिक मानो आत्मबुद्धि प्रसाद जम वो सात्विक सुख नहीं है, और बुद्धि ग्राह्य में तामस सुख नहीं है, बुद्धि लीन हो जाती है नींद में। और अतिम कहने से इंद्रियों से होने वाला सुख नहीं है, मतलब सात इंद्रियों से होने वाला राजस होता है, और बुद्धि लीन होती है तामस होता है, और जो राजस है वो सुख है सात्विक है, वो सुख बड़ा अच्छा होता है, परंतु वो सुख आत्यंतिक नहीं है, सात्विक वृत्ति होती तब होता है, सात्विक वृत्ति नहीं होता। मन सतोगुण की महिमा बहुत ज्यादा है, रजोगुण तमोगुण सत्व ऐसे नहीं है, तीनों गुण है ना, ऐसे नहीं है, ऐसे है ऐसे, ये है तमोगुण, ये रजोगुण, ये सतोगुण, इसका मुख्य स्थित है। ये रजोगुण तमोगुण आसुरी संपत्ति है, ये देवी संपत्ति है, तीनों ये नहीं है। एक दस से सौ की तरह है, एक से दस गुना दस होता है, दस से दस गुना सौ होता है, तो एक से दस के फैसला कम है, दस से सौ गुना का बहुत फैसला है। ऐसे सात्विक सुख का बहुत, इस वजह से सात्विक सुख को अनामय का तब तो सत्तम निर्मल प्रकाश कम अनामय हम सुख संग बदना की ज्ञान संग और कर्म कम फल तकता धनबंध विनिर्मुखता पदंग सिद्धि अनामय हम अनामय पद तत्व को प्राप्त हुआ वो उसको अनामय कहा है, या सात्विक में भी अनामय पद आया है, तो सात्विक सुख बहुत नजीक है, पूरा चीज के सुख है नजीक पड़ता है, राजस्थान से दूर पड़ते हैं, तो तीनों सुखों से अलग है आत्यंतिकम बुद्धिग्राहिम अतेंद्रियम, तीनों धातु विचित्र है। ये कहा तो बुद्धि ग्राही बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि जागृत रहती है। सर्वानिंद्रिय सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जो बुद्धि ज्ञान दीपिते, ये ज्ञान दीपिते ये बुद्धि ग्राही है, ज्ञान की दीप्ति रहती है, ये समाधि का वर्णन है, उसमें ज्ञान दीप्ति ज्ञान की दीप्ति रहती है, ज्ञान की दीप्ति नहीं रहती तो नींद हो जाती है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि और प्राण कर्माणि क्या पड़े आत्मसंयम योगाग्नि आत्मसंयम योग उसमें अग्नि का हो जाता है, क्रियाओं का पदार्थों का इंद्रियों का सब उसमें आहुति हो जाती है, वो ज्ञान दीप्ति ज्ञान से दीप्ति है उसी उस दीप्ति से प्राप्ति होती है, ज्ञान की दीप्ति रहती है। आत्मसंयम योगाग्नि जो होती ज्ञान दीप्ति से ज्ञान की दीप्ति होती है, तो ज्ञान दीप से यह है बुद्धि बुद्धि ग्राह्य। नारायण 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 नारायण।